का था, रूह वही रूप नया।
जीवन एक अनंत यात्रा। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। पांव बेहिस है, चलते जाते हैं, एक सफर है जो चलता रहता है। गुलजार साहब की ये लाइनें हमारे जीवन की हकीकत बयां करती हैं। हर व्यक्ति जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आकर यही सोचता है, लेकिन सांसें क्या कहें, मुजब रुकती हैं। सांस लेने की आदत से मजबूर हर व्यक्ति बिना इच्छा के भी जीवन यात्रा से जुड़ा रहता है। हर व्यक्ति की अपनी एक जीवन कथा है, उसमें जाने अनजाने बहुत से पन्ने जुड़ते जाते हैं। जीवन के ये यात्रा कभी बहुत लंबी लगती है। ऐसा लगता है कि जब जीने का मकसद नहीं मिलता, फिर भी हम जिए जाते हैं, क्योंकि इसका सूत्रधार कोई और है, हम तो बस एक कठपुतली हैं। जन्म के साथ ही हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। जन्म के साथ ही व्यक्ति अनंत यात्रा पर निकल जाता है। यह यात्रा सांसें छूटने के साथ ही पूरी होती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीन पायदानों पर चलते हुए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमों से गुजरता हुआ जीवन, सुख दुख, आशा निराशा आदि पड़ावों को पार करता हुआ निरंतर चलता रहता है। जीवन में कभी महफिलें, कभी अकेलापन, कभी हार, कभी जीत, कभी गम, कभी संगीत, यही फलसफा है जीवन का। तरह तरह के लोगों से मिलना, कभी मजबूरी तो कभी जरूरत, कोई अपना सा तो कोई पराया सा दिखाई देता है यहाँ। कभी चहल पहल भरी जिंदगी में अचानक से ठहराव आ जाता है। खुशनुमा जिंदगी गमों में डूबने लगती है, अकेलेपन काटने लगता है और व्यक्ति सोचता है कि काश ये पल अंतिम हो, जिंदगी की शाम यहीं ढल जाए, सांसें थम जाए, जान निकल जाए। मोहनलाल की जीवन यात्रा भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रही है। वह दुआ कर रहा है कि तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, अब तो बुला ले। बड़ा ही असहाय, अकेला आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। ये नीम मोहन को बहुत से बोध पाठ कराता है। कोई भी ऋतु आए, कोई भी ऋतु जाए, नीम शांत खड़ा रहता है। मोहनलाल के इर्द गिर्द आज यादों के अलावा कोई नहीं है। नीम से ही बतिया रहा है, नीम से ही बांट रहा है जीवन यात्रा के हर पल। मैं साधारण परिवार में जन्मा, किंतु मेरे माँ पिता बहुत ही असाधारण थे। मेरी परवरिश में कोई कसर ना रखी, मुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छा इंसान बनाया। माँ पिता का वात्सल्य लिखने बैठूं तो शायद एक महाकाव्य लिख जाए। उनकी ममता, उनका प्यार जो मुझे मिला, वो मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर था। वो जीवन उनके साए में गुजरा, जो जीवन उनके साए में गुजरा वो स्वर्ग से भी बढ़कर क्या दिन थे वो, बस इतना ही कह सकता हूँ। दादा दादी का मैं अजीज था, उनकी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही घूमती थी। दादा दादी ने भी भरपूर स्नेह दिया, खूब कहानियां सुनाते, बगीचे व मेले में घुमाते, कभी मंदिर कभी सत्संग में ले जाते, और प्रसाद के लालच में मैं तुरंत उनके साथ जाने को तैयार रहता। जैसे ही मैं 12 साल का हुआ, दादा दादी को रामायण पढ़कर सुनाने लगा। वो मुझे एक एक शब्द का अर्थ समझाते। पिता पोस्टमास्टर थे, बड़े ही समय के पक्के व धार्मिक व विनम्र। मैं उनके साथ कई बार पोस्ट ऑफिस जाया करता था। मैं डाक टिकट पर बने चित्र के बारे में खूब सवाल जवाब करता। जल्द ही डाक टिकट के बारे में बहुत कुछ सीख गया था। घर आकर माँ को सुनाता, वह बड़े ध्यान से सुनती। उस स्कूल में होने वाली डाक टिकट प्रतियोगिता में मैं प्रथम आया था। स्कूल जाना मुझे अच्छा लगता था। शाम को मोहल्ले के पार्क में मित्रों के साथ खेलना भी मुझे बहुत भाता। दादा मुझे लेने आते, रास्ते भर मिलने वाले दादा को राम राम कहते, रास्ते में दशरथ चाचा की दुकान से मुझे कलाकंद खिलाते हुए लाते। मैं रात को कम खाता तो माँ डांटती, सुबह माँ रमा चाची के यहाँ से दूध लाती, मैं भी साथ जाता। माँ मेरे हाथों से गाय को रोटी खिलवाती। हमारे पड़ोस में चटर्जी अंकल रहते थे, संगीत के शिक्षक थे। उनकी बेटी श्रेया, जिसे मैं दीदी कहता था, बहुत अच्छी वीणा बजाती थी। दीदी माँ को ही अपनी माँ मानती थी। आंटी बहुत पहले ही यात्रा खत्म कर चुकी थी। हर त्योहार पर वो हमारे यहाँ आती, खूब मस्ती होती, वीणा वादन होता, चटर्जी अंकल भजन गाते, हम सब तालियां बजाते, दीदी की शादी हो गई, मैं अकेला हो गया। मैं ना जाने कब बड़ा हो गया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंचते ही मेरे भी रिश्ते आने लगे। दादा दादी की फरमाइश के मुताबिक कॉलेज पास करते ही मेरी शादी हो गई। मैं एकदम से बहुत बड़ा हो गया। अब माँ मेरे कमरे में नहीं आती, मैं ही उनसे मिलने जाता। हम दोनों की गैर हाजिरी में लेकिन कमरा ठीक करना वह कभी ना भूलती। मुझे बैंक में नौकरी मिल गई, मैं व्यस्त हो गया। माँ ने पत्नी को शीघ्र ही अपना बना लिया। वह माँ की बहुत तारीफ करती, कभी कभी तो मुझे रश्क होने लगता, पर माँ तो थी ही ममतामयी। इसीलिए तो दीदी ससुराल से सीधा माँ का आशीर्वाद लेने आती, उसके बाद अपने घर जाती। माँ पिता के आशीर्वाद से मेरी गृहस्थ की गाड़ी सही पटरी पर चलने लगी। माँ पिता के सुखद जीवन से यही सीख मिली थी कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के सहयोग से ही परिवार चलता है, बच्चे अनुशासन में रहते हैं, बच्चे संस्कारवान बनते हैं, दोनों का तालमेल, एक दूसरे का सम्मान, यही शांति और सुकून देता है। हम दोनों खुश थे। जल्दी ही मैं पिता बन गया। माँ पिताजी ने उसका नाम आशुतोष रखा। दादा दादी के संरक्षण में आशुतोष को बढ़ता हुआ देख मैं बहुत खुश था। आशुतोष के कारण घर में रौनक लगी रहती थी। उसकी हर हरकत पर माँ पिताजी कहते, तू छोटा था तो ऐसी ही शैतानियां किया करता था। और यूं ही समय बहता रहा। आशुतोष स्कूल जाने लगा और फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। इतना बड़ा होने पर भी वो हम सबके लिए छोटा बच्चा था, हम सबको उसकी फिक्र रहती। माँ पिताजी अब अपना समय सत्संग में गुजारने लगे। श्रीमती मेरी धर्मपत्नी अकेला महसूस करने लगी बेटे की याद में, कभी कभी रोने भी लगती। मैं शुरू शुरू में हर माह मिलने चला जाता, छुट्टियों में वह आ जाता। धीरे धीरे मेरा जाना कम होता गया और उसका आना भी कम हो गया। इसी बीच पिताजी की आत्मा ने शरीर त्याग दिया तो मेरे सर से जैसे छत ही सरक गई। माँ उदास रहने लगी। साल भर के अंदर ही माँ की जीवन यात्रा भी पूरी हो गई। जब तक वो दोनों थे, उनके होने के एहसास को हम समझ ही ना पाए। उनके चले जाने पर पता चला कि वो हमारे लिए क्या थे। हम दोनों टूट गए। हम दोनों ने धार्मिक यात्राएं शुरू कर दी। इस वर्ष आशुतोष की पढ़ाई पूरी हो रही थी। हम दोनों बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे कि उसकी चिट्ठी आई, माँ पिताजी माफी चाहता हूँ, मुझे मजबूरन कोर्ट मैरिज करनी पड़ रही है, जल्दी घर आऊँगा। चिट्ठी पढ़ते ही मैं कॉलेज पहुँचा, ये कहने कि बेटा घर चलो, तुम्हारी शादी धूमधाम से इसी लड़की से कर देंगे। लेकिन जब कॉलेज पहुँचा तो पता चला कि 5 दिन पूर्व ही वो हॉस्टल से चला गया। दूसरे ही दिन आशुतोष बहू के साथ घर आ पहुँचा। हम दोनों ने जोरदार स्वागत के साथ परंपरा निभाते हुए दोनों को गृह प्रवेश करवाया। बेटे ने बताया कि शैलजा के पिता रजामंद नहीं थे, इसलिए कोर्ट मैरिज का निर्णय लिया। हम चारों बहुत खुश थे। बहू ने अपने माँ पिताजी को खबर भी दे दी थी। वे आशीर्वाद देने आए थे लेकिन चेहरे पर खुशी से ज्यादा मजबूरी थी। मैंने उन्हें समझाया, बच्चे हैं, माफ कर दें, हमें भी नहीं बताया था, पर हमने स्वीकार कर लिया है। आपकी बेटी अब हमारी बेटी है, इसे यहां पे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वे नाराजगी भरे अंदाज से चले गए। मैंने शैलजा के सर पर हाथ रखा, वो बेटी की तरह मुझसे लिपट कर बहुत रोई। रो मत, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटी, मैंने दिलासा देते हुए कहा था। सास बहू भी जल्दी ही खुल मिल गई और माँ बेटी से रहने लगी। हम बाप बेटे दोनों खुश थे कि सोचा बहू का सबसे तरूफ करवाना जरूरी है, इस वास्ते नवरात्रि में चंडी पाठ का आयोजन किया और रिश्तेदार व मित्रों को सपरिवार दावत का न्योता दिया गया। शैलजा के माँ पिताजी भी आए उस दिन। उन्होंने बेटी व दामाद को सर पर हाथ रखकर आशीष दी। उस दिन के बाद हमारे घर की खुशहाली और भी बढ़ गई। जुलाई में बहू बेटा दोनों को प्रवक्ता की नौकरी मिल गई। उनके जाते ही घर सूना हो गया। सारी जिम्मेदारी पत्नी ने संभाल ली, किंतु उसकी तबीयत गिरने लगी। बेटे बहू अक्सर छुट्टी लेने लगे। अंततया मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। हम दोनों का समय अच्छा कटने लगा। छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं व रिश्तेदारों से मिलना जुलना जारी रखा। 2 साल बाद आशुतोष व शैलजा का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया। हम दोनों साथ गए और उन्हें स्थापित कर 15 दिन बाद लौट आए। उनसे मिलने की लालसा तो लेकिन हमेशा बनी रहती। महीने में जब भी मौका लगता दोनों मिलने चले आते। खाने पीने का ध्यान रखने की हिदायत देते। जब साथ रहते घर की रौनक बढ़ जाती। उनके जाते ही घर फिर से सूना हो जाता। दोनों ने गाड़ी खरीद ली, हमसे मिलने आए और खुशखबरी दी। हम सब शाम को मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और खाना बाहर खाया। मिठाई लेकर गरीब बच्चों में बांटी। सुबह नाश्ता कराते वक्त हम दोनों ने बच्ची की फरमाइश कर दी। बहू शर्मा गई। बेटे ने जाते वक्त कहा, माँ आप जल्दी ही शैलजा आपके साथ रहेगी, कल डॉक्टर से मिलके आपको फोन करेंगे। अगले दिन शैलजा की माँ बनने की खुशखबरी आई। जीने का नया बहाना मिल गया। मेहमान के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नाम भी सोच लिया, बिटिया आई तो शिवा और बेटा आया तो कार्तिकेय रखेंगे। 3 माह बाद शैलजा छुट्टियां लेकर आ रही है। समय बड़ा जल्दी जल्दी बहने लगा। जिस दिन वो आने वाले थे, पत्नी ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, वो सब जो उन दोनों को पसंद था। हम दोनों बेचैनी से इंतजार में बैठे थे कि कार अकस्मात का समाचार मिला। अस्पताल पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हमारे जिगर के टुकड़े सफेद चादर ओढ़ के सोए हुए थे। हमारा जीवन सर्वस्व लुट चुका था। हम हर दिन अपनी सांसें रुक जाने की दुआ मांग रहे थे, किंतु सांसें थी कि अनवरत जारी थी। हम जीना नहीं चाहते थे, फिर भी जिंदगी नहीं छूट रही थी। क्यों समय नहीं थम जाता हर समय? घड़ी व पलों को हर समय हम कोसे जा रहे थे, किंतु आदतन समय निष्ठुर उसी रफ्तार से चला जा रहा था। हमने खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, जीने की चाहत छोड़ दी, किंतु सांसें फिर भी ना रुकी। सभी सांत्वना दे रहे थे। श्रेया बिटिया आई, श्रीमती उससे लिपट कर बहुत रोई। श्रेया ने कुलगुरु को खबर की। कुलगुरु ने हमें बहुत समझाया, मृत्यु का मर्म बताया, हमारा धर्म समझा रहे थे, पर दिल कुछ भी समझने को तैयार ना था। श्रेया 1 मास तक हमारे साथ रही। बेटी होने का धर्म निभाया उसने। आशुतोष के प्यार का कर्ज अदा किया। हम दोनों की मनोदशा का वर्णन करना आज भी संभव नहीं। मैंने खाट पकड़ ली। मैं चुपचाप लेटकर छत को ताकता रहता। श्रीमती ने अपना दर्द छुपा लिया और पति धर्म निभाते हुए पहले की तरह अपने नित्य कर्म शुरू कर दिए। वो मुझसे छुपकर आशुतोष के रूम में जाकर रो लेती थी। जीने के लिए कोई मकसद तो चाहिए था ना। हमारे जीने के मकसद बदल गए। समाज सेवा व धार्मिक कार्यों में भाग लेने लगे। अनाथाश्रम वृद्धाश्रम में समय बिताने लगे। अस्पताल जाकर गरीबों को मदद करने लगे। पत्नी सुबह शाम मंदिर चली जाती। मैं दोनों समय सीनियर सिटीजन क्लब में जाकर बैठने लगा। सीनियर सिटीजन क्लब की तकलीफों को लेकर मैंने एक किताब लिखी। कुलगुरु से विमोचन करवाया, सबने खूब सराहा। उस रात श्रीमती किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा सोई कि सुबह ना उठी। अंदर ही अंदर की घुटन ने उसकी सांसें रोक दी, वह मुक्त हो गई। जीवन भर साथ निभाने का वादा तोड़कर चली गई। मैं निराश हताश अकेले और साथ से घिर गया। 6 मास तक घर से ना निकला। सब प्रयास किए पर सांस ना रुकी। सीनियर सिटीजन मुझे घर आके कंपनी देने लगे। समय बड़ा बलवान है, फिर जीत गया, मुझे अकेले जीने को मजबूर कर दिया। मैं फिर से पार्क में जाकर बैठने लगा। घर के आते में पौधे रोप दिए। सुबह का समय अच्छा कटने लगा। घर में किराएदार रख लिया। उनके छोटे बच्चे से मन बहने लगा। बस सांसें चल रही हैं। जब तक सांसें चल रही हैं, यात्रा चलती रहे, मैं चाहूँ या ना चाहूँ।